ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी कहती हैं, एक बार ओम मंडली की व्यवस्थापक समिति की प्रधान ओम राधे जी यानी मम्मा को न्यायालय में साक्षी के तौर पर बुलाया गया था। ओम राधे जी के साथ हम अन्य 5 बहनों को भी कराची से हैदराबाद आकर उस न्यायालय में जाने के लिए प्रवेश पत्र मिला था। ऐसा लगता था जैसे कि आज सारा शहर यहाँ इकट्ठा हो गया। ओम राधे जी का व्यक्तित्व उस समय एक शक्ति जैसा दिख रहा था। श्वेत वस्त्रों में सौम्य स्वभाव वाली वह एक देवी सी प्रतीत हो रही थी, जैसे कहीं आकाश से वहाँ उतरी हो।
जज,
आप गीता को हाथ में उठाकर यह कहिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। ओम राधे, जज साहब मैं इन आंखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रहे हूँ, भगवान को तो इन नेत्रों से नहीं देख सकती हूँ। तब भला मैं यह झूठी कसम कैसे लूं कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ, मैं तो आप आत्मा को ही जज के रूप में देखती हूँ। इसलिए अगर आप कहें तो मैं यह कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी। यह विचित्र उत्तर सुनकर कोर्ट में बैठे हुए लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, कई तो हंसने भी लगे, किसी किसी ने तो ताली भी बजाई, कोई कोई बोल उठा कि ओम राधे ने बिल्कुल ठीक कहा है। जज साहब मैं कोई भगवान थोड़ी ही हूँ कि आप मेरी कसम उठाएंगी, भगवान के नाम पर कसम उठाना इस कोर्ट का विधान है, हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। ओम राधे ने नम्रता पूर्वक कहा, जज साहब आप स्वयं ही कहते हैं कि सच बोलो, तब भला विचार कीजिए कि जब मैं यहाँ ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती बल्कि यही देखती हूँ कि आज हर एक के मन में काम क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं, तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं। जज साहब थोड़ा आवेग से बोले, यह कोर्ट है, सत्संग नहीं, जहाँ आप मुझे ज्ञान देने लगी हैं, यहाँ तो कानून चलता है, यदि आप यहाँ इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत की हतक के अपराध में गिरफ्तार किया जाएगा। ओम राधे, जैसे आप इस कोर्ट की हतक नहीं कराना चाहते वैसे ही मैं ईश्वर जो कि आपका और हम सबका परम पिता है उसकी हतक कैसे कर सकती हूँ। गीता में भी भगवान के महावाक्य हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, तो फिर भगवान इस संसार में हाजिर कैसे हुए। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और निर्विकार है, परंतु आज हर एक के मन में काम क्रोधादि विकार है और अशांति भी है, तब भला परम पवित्र परमात्मा सब में हाजिर नाजिर कैसे हुए। उस समय ओम राधे जी की आयु 21 वर्ष थी। निर्भीक अवस्था में उनके मुख से ऐसे विवेक संगत उत्तर सुनकर लोग दांतों तले अंगुलियां दबाने लगे। एंटी ओम मंडली के जो लोग वहां उपस्थित थे स्वयं उनके मन को भी यह सच्ची बातें स्पर्श करती मालूम होती थी। कानून से बंधे हुए जज साहब को तो अपनी ड्यूटी निभानी ही थी, अतः यद्यपि उनके मंतव्य को ओम राधे जी के उत्तर झंझोड़ते हुए से मालूम होते थे तो भी वे कमजोर सी आवाज में बोले, कुछ भी हो कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। तब शक्ति रूपा ओम राधे जी बोली, जज साहब मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं उठा सकती। जज साहब अभी भी अवसर देता हूँ, एक बार फिर सोच लीजिए। ओम राधे जी ने कहा, जज साहब मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। ओम राधे जी को डराने के विचार से उन्होंने उपस्थित पुलिस ऑफिसर को आज्ञा दी कि वह उनके हाथों में हथकड़ी डाल दे। पुलिस कर्मचारी हथकड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे। ओम राधे जी मुस्कुराते हुए इसी निर्भय अवस्था में खड़ी रहीं। सभी लोग बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो शायद हथकड़ी लग जाएगी। इतने में जज साहब ने पुलिस कर्मचारियों को आज्ञा दी, ठहरो ठहरो। पुलिस कर्मचारी जंजीर लेकर पीछे हट गए। उपस्थित जनता में से कई लोगों ने फिर ताली बजाई। आखिर जज साहब ने इस तरह की कसम उठाने का आग्रह छोड़ दिया। जज साहब अच्छा यह बताइए कि आप सभी इतना रोकने पर भी घर बार छोड़कर दादा के पास क्यों चली गई। ओम राधे, जज साहब क्या आपने कभी श्रीमद् भागवत पढ़ा है? जब भगवान मुरली बजाते थे तो गोपियां उस मुरली के पीछे क्यों भाग जाती थी, तब उन पर मुकदमा क्यों नहीं चला, वह यही ज्ञान मुरली ही तो थी। जज साहब जब पुरुष लोग संन्यास ले लेते हैं और घर बार छोड़ जाते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता। हम माताएं ज्ञान और पवित्रता का जीवन प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाती हैं, तो हमसे यह प्रश्न क्यों पूछा जाता है। जज साहब ज्ञान अमृत पीने के कार्य में संबंधियों की ओर से जो हमारे मार्ग में रुकावट पड़ते हैं तथा वे माताओं पर जो अत्याचार करते हैं उसी के परिणाम स्वरूप ही ऐसा हुआ है। जज भला दादा आप सबकी आंखों में डालने के लिए कौन सा सुरमा या अंजन देते हैं। ओम राधे, जज साहब क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं। जज जी हाँ कुछ पढ़े तो हैं। ओम राधे तो आपने पढ़ा होगा ईश्वरीय ज्ञान को अंजन भी कहा गया है, एक पद भी है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। अब सद्गुरु परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं तो आत्माओं का अज्ञान अंधेर मिट जाता है, तो वही ज्ञान अंजन अब हमें परमपिता परमात्मा देते हैं जो कि हम औरों को भी देते हैं। जज दादाजी के कितने बच्चे हैं। ओम राधे, जज साहब हम दादाजी के शरीर को नहीं देखते हैं, हम तो दिव्य चक्षु द्वारा उनके तन में प्रविष्ट हुए परमपिता परमात्मा का अनुभव अथवा दिव्य साक्षात्कार करते हैं। अब आप ही बताइए कि भगवान के कितने बच्चे हैं। भगवान तो त्रिलोकी नाथ हैं, सभी उनके बच्चे हैं, केवल हम ही नहीं बल्कि आप भी उनके बच्चे हैं। जज साहब ये सभी उत्तर शांत होकर सुनते रहे और लिखते रहे। ओम राधे जी कटघरे से नीचे उतरकर हमारी ओर आई। जनता ने एक बार फिर तालियां बजाई। विभिन्न समाचार पत्रों के रिपोर्टर या संवाददाता भी कोर्ट में बैठे ये प्रश्न उत्तर लिख रहे थे। जब माँ ने बच्चों के बीच दिल्ली धरनी पर पदार्पण किया, बस सभी का मनवा उल्लास और अपनत्व से भरकर यही कह रहा था, यह हमारी माँ है, हमारी माँ आ गई है। अरे यह ज्ञान वीणा वादिनी सरस्वती माँ है, यह वही है जिनको चित्रकार हंस वाहिनी विद्या वरदायिनी के रूप में चित्रित करते हैं। धन्य है हमारे यह नयन और सफल है हमारी यह जीवन की घड़ियां कि हम बिछड़े बच्चों को माँ से अलौकिक मिलने का सौभाग्य मिला। अरे इतने भाग्यशाली हैं हम जिन्हें माँ की पहचान मिली है। मना करने पर पर भी बहुत लोग फूल मालाएं ले आए थे। अवश्य ही उन्होंने सोचा होगा कि जन्म जन्मांतर जब हमें माँ की पहचान नहीं, तब तो हम माँ की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करते रहे पर उसके दर्शनों की प्यास न बुझी। और अब जब नयनों को अंजन देने वाली माँ आएंगी तो क्या हम माँ को पुष्प भी भेंट न करें? अतः पहले से रोकने पर भी वे रुके नहीं, बल्कि अच्छे से अच्छे सुगंधी पूर्ण खिले हुए फूल, गुलदस्ते और पुष्प मालाएं ले आए थे। आगे बढ़े वे माँ को पुष्प माला समर्पित करने, परंतु यह क्या, माँ का वरदानी हाथ उन्हें थमने का संकेत देने के लिए उठा। सरस्वती माँ ने कहा, वत्सो, मुझे यह फूल नहीं चाहिए, आप वत्स ही मेरे लिए मन वांछित पुष्प माला है। मुझे तो पिताश्री ने ऐसे पुष्पों की माला पिरोने के लिए भेजा है, बोलो क्या आप ऐसे फूल बने हैं? सभी बोल उठे, हाँ माँ, हम तो अब शिव बाबा के ज्ञान द्वारा कांटों से फूल बने हैं। मधुबन की ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन जी कहती हैं कि एक बार एक पार्टी जब बाबा मम्मा से विदाई लेने गए तो बाबा ने कहा, मम्मा साबूदाने का हलवा बनाओ। मम्मा ने कहा, जी बाबा। मैं तो मम्मा की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई, साबूदाने का हलवा बनने में तो बहुत समय लगता है। मम्मा मुस्कुराई और कहा, बाबा ने कहा है तो बन ही जाएगा। पार्टी वाले तो निकल गए, मम्मा हलवा बनाती रही, बस स्टैंड तक पहुंच गए। बाबा ने पूछा, मम्मा हलवा बन गया? मम्मा ने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने हलवे को एक डिब्बे में भरा और एक भाई को कहा, यह डिब्बा बस स्टैंड जाकर उन बच्चों को देकर आओ। उस समय कोई गाड़ी तो थी ही नहीं यज्ञ में। वह भाई दौड़ कर बस स्टैंड पहुंचा, भाई ने हाथों से इशारा किया तो बस रुक गई। बाबा का भेजा हुआ हलवा पाकर वे सब गदगद हो उठे।
उन्होंने आबू रोड पहुंचते ही बाबा के लिए प्यार और धन्यवाद भरा पत्र लिखा और खुशी में मगन होकर बाबा की याद में हलवा खाया। पहली बार 1955 में आबू में 14 साल की आयु में जब मैंने मम्मा बाबा को देखा तो वे मुझे लाइट के कार में दिखाई पड़े। उनकी मीठी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही मैं सोच में पड़ गई कि मैं किन फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ, जो उस दुनिया से बहुत प्यारी भी है और न्यारी भी।
ऊना से दादी ब्रज शांता जी कहती हैं कि कराची में हम लोग रोज वर्दी पहनकर टेनिस कोर्ट में ड्रिल करने जाते थे। एक दिन मम्मा ने पूछा, तुमने जूते क्यों नहीं पहने? मैंने कहा, मम्मा 2-3 दिन से पांव में दर्द है। बाद में मेरा मन अंदर ही अंदर खाने लगा कि मैंने मम्मा महारानी से झूठ बोला, क्योंकि उस दिन तो मेरे पांव में दर्द नहीं था, उस दिन मैं जूते पहन सकती थी। बाबा कहते थे कि किसी से कोई भूल हो जाए तो एक दिन का नाश्ता अथवा भोजन छोड़कर अपने आप को सजा दो। कचहरी में मैंने अपनी भूल बता दी कि मम्मा मैंने आज आपसे झूठ बोला है, इसलिए मैंने अपने आप को सजा दी है। करुणा मई, मम्मा ने कहा, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? मम्मा के साथ तुम भी नाश्ता करो चलो। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला है, मुझे सजा भोगने दो। वात्सल्य मई, मम्मा ने कहा, रज शांता, क्या तुम अपने साथ मम्मा को नाश्ता नहीं करने दोगी? फिर क्षमा मई, मम्मा मेरी उंगली पकड़ कर ले चली और कहा, तुम्हें छोड़कर मैं नाश्ता नहीं करूंगी। आखिर मम्मा ने अपने साथ बिठाकर मुझे नाश्ता खिलाया। काशी से ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन जी कहती हैं कि मैं भगवान से देवी बनने की प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं ध्यान कर रही थी तो अचानक शिवलिंग के स्थान पर प्रकाश पुंज निकलने लगा और मंदिर के दरवाजे पर सफेद वस्त्रधारी तेजस्वी व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ। आकाशवाणी हुई, बच्ची जो चाहती हो बन जाओगी। इस साक्षात्कार के बाद मुझे देवी बनने की धुन से सवार हो गई। मन में यही आता था कि कहीं हिमालय की कंदराओं में जाऊं और तपस्या करके देवी बन जाऊं, लेकिन कन्या होने के कारण आगे कदम नहीं बढ़ा पाती थी। आखिर मुझे सत्संग में जाने का सुअवसर मिला। मैं जब वहां योग में बैठी तो तुरंत ध्यान में चली गई। ध्यान में शिव बाबा ने पूछा, बच्ची जगदम्बा सरस्वती से मिलना चाहती हो?
मातेश्वरी जगदम्बा साक्षात देवी है।
मैंने कहा, हाँ बाबा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम अब देवी बन जाओगी। मैं खुशी के मारे झूम रही थी। जब मैं ध्यान से सामान्य अवस्था में आई तो ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा, जिनको साक्षात्कार में 5 वर्ष पूर्व देखा था। मातेश्वरी जगदम्बा की दृष्टि जो ही पड़ी, मुझे वीणा वादिनी साक्षात सरस्वती का साक्षात्कार हुआ और उनके चारों ओर प्रकाश का चक्रमण करता हुआ पुंज दिखाई दिया। अचानक मम्मा के स्थान पर कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी और कभी सरस्वती दिखाई पड़ी।
मम्मा ने कहा, तुम्हें शक्ति की देवी दुर्गा बनकर सेवा करनी है, तुम जगत माता हो। आज भी मम्मा से प्रथम मुलाकात के क्षण आंखों से मूर्तियों के रूप में छलक पड़ते हैं। दिल्ली हरिनगर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी कहती हैं कि मम्मा से मेरी पहली मुलाकात 1956 में हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि आपकी पवित्रता और शीतलता की किरणें मेरे समस्त विकारों को भगा रही हैं। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे मम्मा जैसा ही जीवन बनाना है। इंदौर के ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी कहते हैं कि 1956 में जब मातेश्वरी जी से पहली बार मिला तो उनकी दिव्य बुद्धि को देखकर अचंभित हो गया, एक अलौकिक कशिश पैदा होने लगी। लगा कि सच में यही जगदम्बा है जिसकी भक्ति करते थे, व्रत रखते थे। कलकत्ते से ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी बहन कहती हैं कि 1964 में 6 वर्ष की आयु होने के कारण ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना तो अनुभव होता था कि मम्मा बहुत महान तेजस्वी और ओजस्वी देवी है। चुपचाप बैठकर उनको देखती थी और देखती ही रहूं यह इच्छा होती थी।
मधुबन से ब्रह्मा कुमार छोटे लाल भाई बताते हैं कि जनवरी 1960 में मम्मा कानपुर से बस में शाम को निकली, लेकिन कच्ची सड़क और बीच बीच में नहर कटी होने के कारण सिहमाऊ पहुंचने में सारी रात लग गई। हमने रात भर बैठकर योग भट्टी की। सारी रात अनुभव हो रहा था कि मम्मा हमें शक्ति दे रही है। मम्मा ने पहुंचते ही अपने बारे में रिंचक मात्र सोचे बगैर खुद रोटी बनाई और सब बच्चों को खिलाई। उसके बाद चावल साफ किया और दोपहर के लिए सारी तैयारी कर ली। हमने माँ का असीम प्यार देखा और धन्य धन्य हो गए। वहाँ कुर्सी मेज तो थी नहीं,
ओजस्वी
मम्मा ने घंटों खड़े होकर ही प्रवचन दिया। सभी लोगों और साधु सन्यासी संतों ने भी पूरा समय खड़े होकर ही ज्ञान सुना। उनमें कई ऐसे लोग भी थे जो हमारे ज्ञान पर टीका टिप्पणी करते थे, वे भी चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। प्रवचन पूरा हुआ तो हमने कहा आपने तो मम्मा से कुछ पूछा ही नहीं, हमसे तो आप बहुत कुछ पूछा करते थे। उन्होंने कहा आपकी मातेश्वरी जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मुंह ही बंद हो गया हो। मम्मा ने कभी यह नहीं देखा कि यह गांव है, अनपढ़ लोग हैं, जाने में तकलीफ होती है। नहीं, बाबा की सेवा के लिए वह हर समय दिन हो रात हो शहर हो गाँव हो सुशिक्षित हो अशिक्षित हो तैयार रहती थी।